आरव आयु के लिए मंथन का रिश्ता लेकर ओबेरॉय मेंशन पहुंच चुका था और इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सुबह सुबह मंथन की फैमिली को वहां देखकर ओबेरॉय फैमिली हैरान थी, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब आरव खुद उन्हें वहां लेकर आया था। हालांकि उनके इस तरह अचानक आने पर ओबेरॉय फैमिली खुश नहीं थी, लेकिन कभी न कभी आयु और मंथन की शादी करनी ही थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से आहूजा फैमिली की आवभगत करना शुरू कर दिया था। आरव ने आयु की शादी करवाने का फैसला ले तो लिया था, पर उसे अपने भीतर एक दर्द दबता हुआ महसूस हो रहा था। वहां जाने के बाद भी आरव की निगाहें आयु को ही ढूंढ रही थीं। आरव ने जयजी की तरफ देखा और कहा, आयु, मेरा मतलब है आपकी दोनों बेटियां दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको आयु को तैयार होकर आने के लिए बोल देना चाहिए। और तुम्हें इस बात की चिंता क्यों सता रही है? यकीन नहीं होता तुम यहां खुद आए हो, रुद्र ने तंज भरे लहजे में कहा। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने आरव से सीधे सीधे ही पूछ लिया था। इसमें यकीन न करने जैसा कुछ नहीं है, मैं दुनिया में उन आदमियों के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ जो अपनी पत्नी को जबरदस्ती बांध कर रखते हैं, प्यार न होने के बावजूद उसे अपने साथ रिश्ते में रहने पर मजबूर करते हैं। उन्हें मुझसे सीखना चाहिए। न सिर्फ मैंने अपनी वाइफ को उसकी खुशी के लिए तलाक दिया है, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड से शादी तक करवा रहा हूँ, आरव ने हल्के लहजे में जवाब दिया। सिमरन ने सिर हिला दिया था। वो आराम से जवाब में बोली, सच में आप बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं आरव। वैसे अनु फिलहाल आउट ऑफ इंडिया है और आयु शायद अपने कमरे में है। शायद से क्या मतलब हुआ? उस पर नज़र रखिए, आप जानते हैं ना उसकी पुरानी आदत है घर से भागने की, आपको उसे बांध कर रखना चाहिए, आरव ने जवाब में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी रात काम कर रही थी इस वजह से थक गई होगी, सिमरन ने दांत पीसते हुए कहा। न जाने क्यों आरव उससे बहस कर रहा था। कविता जी ने सिमरन के कहते ही तुरंत घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 10 बजने को आए थे। उन्होंने आंखें बड़ी करके कहा, क्या अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? क्या उसे नहीं पता कि आज हम उसके लिए रिश्ता लेकर आने वाले थे? और इतना देर तक सोएगी तो फिर घर गृहस्थी कब संभालेगी? नहीं, उसे नहीं पता था, क्योंकि आपने हमें बताने का मौका ही कब दिया, हमें तो खुद अब पता चल रहा है, जयजी ने जवाब दिया। आंटी, आप घर गृहस्थी संभालने की उम्मीद उससे मत कीजिएगा, वो टाइम से उठकर ऑफिस पहुंच जाएगी, यही उसके लिए बड़ी बात होगी। बस आप इसी में खुशी मनाइएगा कि आपके बेटे को उसका प्यार मिल रहा है, बाकी आप उससे कोई उम्मीद मत रखिएगा, आरव ने कविता जी से कहा। आरव की बातें और हरकतें रुद्र और सिमरन के लिए बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही थीं। फिलहाल वो ये सोचकर चुप थे कि आयु मंथन को पसंद करती है और मंथन की फैमिली वहां बैठी हुई थी। मैं आयु को लेकर आती हूँ, सिमरन ने कहा। उसने रुद्र को अपने पीछे आने का इशारा किया। कमरे से बाहर निकलते ही सिमरन ने रुद्र से कहा, क्या सच में आरव खुराना पागल हो गया है? हुआ नहीं है, पहले से ही है, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आई होप कि उसे यहाँ देखकर आयु गुस्सा ना करे, रुद्र ने जवाब दिया। आरव को तो छोड़ो, मंथन की फैमिली भी कितनी अजीब है। मुझे मंथन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली को देखने के बाद क्या सच में मंथन और आयु की शादी होनी चाहिए? सिमरन ने मायूस स्वर में कहा। जब आयु ने ही उसे पसंद किया है तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो आयु को बताते हैं, रुद्र ने टॉपिक को वहीं पर क्लोज कर दिया था। वो दोनों ऊपर आयु के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी बहाना बनाकर आरव भी बाहर आ गया था। वो जल्दी से उनके पीछे जाने लगा। मुझे आयु से बात करनी है, आरव ने पीछे से तेज आवाज में कहा। तो रुद्र और सिमरन अपनी जगह पर रुक गए थे। उन दोनों ने पलटकर आरव की तरफ देखा। रुद्र ने आरव को घूरते हुए कहा, क्या बात करने के लिए अब कुछ बाकी रह गया है? हो क्या गया है तुम्हें? हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि तुम आयु को अपने साथ रखने के लिए किस तरह जिद पर अड़े हुए थे। हाँ, सही कहा तुमने, मैं जिद कर रहा था और अब मुझे उसके साथ जबरदस्ती करना सही नहीं लग रहा है। मुझे बहस नहीं करनी रुद्र, मुझे आयु से बात करनी है और आई होप कि तुम मेरी हेल्प करोगे, आरव ने बिना किसी भाव के कहा। आरव को हाँ कहने से पहले रुद्र ने सिमरन की तरफ देखा तो सिमरन ने हाँ में सिर हिला दिया था। उन्हें यही लगा कि आरव और आयु के बीच किसी तरह की गलतफहमी हुई है। अगर वो दोनों अभी बैठकर बात करेंगे तो शायद किसी तरह का रिश्ता तय होने से पहले उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर ज्यादा टाइम मत लगाना, मॉम और डैड आयु के आने का इंतजार कर रहे हैं, रुद्र ने हामी भरते हुए कहा। आरव ने उसकी बात का जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा और दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सिमरन ने पीछे से तेज आवाज में कहा, कम से कम ये तो पूछ लो कि उसका कमरा कौन सा है, आगे जाकर लेफ्ट साइड में सेकेंड लास्ट रूम है। थैंक्स, आरव जवाब में चिल्लाया और अगले कुछ ही मिनटों में वो आयु के कमरे के सामने खड़ा था। आयु के कमरे का दरवाजा खुला था। आरव अंदर गया तो उसने देखा कि पूरे कमरे में आधे अधूरे डिजाइंस बनाए हुए पन्ने बिखरे हुए थे, जबकि आयु बेड पर सो रही थी। सिमरन ने ठीक कहा था, वो देर रात तक काम कर रही थी, इस वजह से उसकी अब तक नींद नहीं खुली थी। आरव ने उन सभी पेपर्स को इकट्ठा किया और उन पर बनी हुई डिजाइन को देखने लगा। उसने तंज भरे लहजे में सिर हिलाया और कहा, कभी तो कोई काम पूरा कर लिया करो एक्स वाइफ। उन्हें संभाल कर अच्छी तरह रखने के बाद आरव आयु के पास आकर बैठ गया था। उसने प्यार से आयु के चेहरे की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, तुम्हारे लिए बदल गया था, मेरी शादी और प्यार को लेकर सोच बदल गई थी, पर तुम्हारा प्यार तो हमेशा मंथन के लिए था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हें और मंथन को एक साथ देखकर मेरे दिल पर क्या बीती थी, और आज मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। माना मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन फिर भी मैंने दिल से तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना। तुम्हारे उस धोखे के बावजूद भी मुझे तुम्हें खुश देखना है। आरफ की आंखों में नमी उतर आई थी। उसने तुरंत खुद को संभाला और आयु के पास से खड़ा हो गया था। उसने आयु को जगाने के लिए उसका ब्लैंकेट खींचा। तभी उसने देखा कि आयु स्विमसूट पहनकर सोई हुई थी और उसकी पीठ पर लाल निशान पड़े हुए थे। आरव आयु की तरफ हैरानी से देखने लगा, लेकिन तभी ब्लैंकेट खींचने की वजह से आयु की नींद टूट गई थी और वो जल्दी से उठकर बैठ गई। अचानक आरव को अपने सामने देखकर वो हैरान थी। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों की तरफ गई। आयु ने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आयु ने हड़बड़ाकर कहा। आरव का उसके घर पर आना लगभग नामुमकिन था। आयु ने अपने गाल को पिंच किया और खुद से बोली, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अपना गाल खींचने पर आयु को दर्द महसूस हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। आरव सच में उसके सामने खड़ा था। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, उतने में उसने जवाब भी दे दिया था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आरव ने आगे कहा, तुम्हारी बैक, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने देखा कि तुम्हारी पूरी बॉडी पर अजीब से निशान थे। तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। इतना कहकर आरव ने आयु का हाथ पकड़ लिया, पर आयु ने उसे खुद से दूर धकेल दिया।
दूर हो मुझसे। और तुम्हें किसने कहा था ब्लैंकेट खींचने के लिए? ऐसे किसी के कमरे में कोई बिना बताए कैसे आ सकता है? और तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते हो, आयु हड़बड़ाकर बोल रही थी। क्या मतलब नहीं देख सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, व्हाट्स द बिग डील? ये तो मैं था, यहाँ मेरी जगह कोई भी हो सकता है। ऐसे कपड़े पहनकर कौन सोता है? और तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें क्या हुआ है, आरव ने जवाब दिया। ऐसा समझ लो तुम्हारे ही दिए हुए जख्म है। खैर, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आयु ने चिढ़कर कहा। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था, आरव ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। आरव की बात सुनकर आयु को झटका सा लगा। एक पल के लिए उसे ये सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा था और उसे यही लगा कि आरव खुद के लिए अपना रिश्ता लेकर आया है। पर अगले ही पल आयु को आरव का पुराना बर्ताव याद आने लगा था। वो उसे जबरदस्ती लॉयर के पास लेकर गया था और न जाने उसके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा था। आयु के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए थे। उसने सख्त आवाज में कहा, तो मेरी तरफ से इनकार है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और ना तुमसे दोबारा शादी करनी है। और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हारे लिए खुद का रिश्ता लेकर आऊंगा? यहाँ मैं खुद के लिए नहीं बल्कि मंथन के लिए बात करने के लिए आया था। चलो अब कोई ड्रामा मत करना, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मंथन की फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है, आरव ने बताया। आयु हैरानी से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रही थी। उसने गर्दन टेढ़ी करके कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें हमेशा सीरियस चीजें मजाक क्यों लगती हैं? अगर यकीन नहीं है तो नीचे जाकर खुद देख लो। मैं जानता हूँ कि कई बार जब हमें खुशियाँ मिलती हैं तो ये किसी सपने से कम नहीं होता है, पर डोंट वरी, तुम्हारा सपना सच हो रहा है। फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलने वाला है, आरव ने जवाब दिया। आरव की हरकतें सच में आयु के बर्दाश्त के बाहर थीं। बाकी सब कुछ कम नहीं था जो वो अब मंथन का रिश्ता लेकर उसके यहाँ पहुँच गया था। यू आर कम्प्लीटली इम्पॉसिबल आरव खुराना, आयु ने अविश्वास भरे भाव से कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और मेरी मर्जी के बिना तुम मेरी लाइफ को लेकर इतना बड़ा फैसला लेने वाले होते कौन हो? मुझे मंथन से शादी नहीं करनी है। क्या तुम्हें याद नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया था? तुम क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो? तुम जो चाहते थे वो मैंने कर दिया था, हम दोनों अलग हो गए हैं। इतना सब कुछ करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम मंथन का रिश्ता लेकर आ गए? यही तो तुम चाहती थी। मुझे पता है तुम खुलकर नहीं बोल पाओगी और तुम्हारे मन में अभी भी यही चल रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगा। डोंट वरी, तुम्हें अपनी खुशियाँ मिलने का हक है। अब मुझे किसी तरह की बहस नहीं करनी, तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आरव बोला। वो इस बारे में बात करके खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहता था। शायद आरव थोड़ी देर और आयु और मंथन के रिश्ते के बारे में बात करता तो वो आयु के सामने कमजोर पड़ जाता। वहीं आयु को भी समझ आ गया था कि आरव से बहस करना बेकार है, वो अपनी जिद में किसी की नहीं सुनता था। आयु ने कोई जवाब नहीं दिया और ब्लैंकेट में खुद को लपेटकर बाथरूम में चली गई। देखो तो कितनी जल्दी लगी है इसे मंथन से शादी करने की, आरव ने मुंह बनाकर कहा और वहीं बेड पर बैठ गया। वहीं बाथरूम के अंदर जाकर आयु ने जल्दी जल्दी वहां पड़े हुए कपड़े पहने। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर बाथरूम में लगी खिड़की के कांच हटाने शुरू कर दिए थे। अब तो मुझे इस खिड़की से कूदकर भी भागना पड़े तो चली जाऊंगी, लेकिन मुझे मंथन से शादी नहीं करनी। मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आरव, लेकिन मैं अपने दिल में तुम्हारे अलावा किसी को जगह नहीं दे पाऊंगी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और को अपने करीब आने दूं, आयु ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। आरव चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे, लेकिन सच तो ये था कि उसका प्यार और नफरत दोनों ही अब सिर्फ और सिर्फ आरव के लिए थी। आयु ने बाथरूम की खिड़की से नीचे की तरफ झांका तो वहां से ठीक ठाक ऊंचाई थी। वो कूदकर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन वो अपने साथ ब्लैंकेट लेकर आई थी जिसके सहारे वो नीचे उतरकर आराम से जा सकती थी। आयु ने कुछ और कपड़ों की मदद से एक लंबी रस्सी जैसी तैयार की और उसे बांधकर नीचे उतरने लगी थी। वहीं 10 मिनट पूरे हो जाने के बाद भी आयु बाहर नहीं आई तो आरव बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर दरवाजा खटखटाने लगा था।
कितना टाइम लगा रही हो, जल्दी करो, सब वेट कर रहे हैं। पहले से ही तुम्हारी कोई खास अच्छी इमेज नहीं है उन सबके सामने, ऊपर से तुम देर करके और भी गड़बड़ कर रही हो। जल्दी बाहर आओ, आरव चिढ़ते हुए बोला। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो आरव की आंखें बड़ी हो गई थी। हद है, मैं इस पर यकीन कर भी कैसे सकता हूँ, आरव चिढ़कर बोला। आयु के कोई जवाब ना देने पर आरव समझ गया था कि आयु अंदर नहीं है, पर वो इस बार आयु को किसी भी कीमत पर भागने नहीं देने वाला था। सॉरी फॉर द गैप, आई नो कहानी में चल रहे ट्विस्ट से आप थोड़ा खुश नहीं हैं, पर मैंने काफी फनी तरीके से सब कुछ लिखा है, तो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। इस कहानी का पार्ट मैंने एक दिन के गैप से रखा है, तो आप भी अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं और देखते हैं कि आरव आयु को कैसे रोकता है।